हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगला एक हफ्ता बहुत ही शांति से बीता था। सबकी जिंदगी नॉर्मल हो चली थी। राव्या भी पूरी कोशिश कर रही थी निमानी परिवार में घुलने मिलने की। अनंत ने अपना आर्किटेक्चर का स्टार्टअप शुरू कर लिया था। राव्या और अनंत दोनों आपस में बातें करते हुए निमानी हाउस से बाहर जा रहे थे। अनंत ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, धर्मपत्नी, हम 15 मिनट लेते हैं। सुबह के 8:15 हो चुके हैं। राव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम ही नहीं उठे, मैं क्या ही कर सकती हूँ। अनंत ने भी हल्के गुस्से में कहा, तुम रात को मुझे कमरे के अंदर नहीं सोने देती हो। भारत में पता है कितने मच्छर हैं। कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी हवा चलने लगती है। इस वजह से मैं रात को ढंग से नहीं सो पाता हूँ। सुबह थोड़ी शांति आती है बालकनी में, तब मुझे ज्यादा नींद आती है। तो सारी गलती मेरे अकेले की नहीं है। राव्या उसकी बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही उन दोनों को दरवाजे पर दो अनजाने चेहरे नजर आए, जिन्हें आज से पहले उन दोनों ने कभी नहीं देखा था। वे एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। वे और कोई नहीं बल्कि काशी और राधे श्याम थे। काशी और राधे श्याम ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर थोड़ा संभलते हुए अंदर आए। उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था अपनी बेटी के ससुराल ऐसे बिना बताए आने पर। अनंत ने आगे बढ़ते हुए कहा, जी अंकल, आप लोग कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको किसी से मिलना है? राधे श्याम पूरी हिम्मत जुटा रहा था कि वो अनंत के सवाल का जवाब दे, पर उसमें वो हिम्मत नहीं थी। उन दोनों की आंखें ऐसी सूजी हुई थीं जैसे उन्होंने पूरी रात रोते हुए विदाई हो। उनकी ये हालत देखकर अनंतन सही पर राव्या का नरम दिल जरूर पिघल गया था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग अंदर आइए, आपको जिससे भी मिलना है हम मिलवा देंगे। इतना बोलकर राव्या साइड हट गई और उन दोनों को हॉल में लगे बड़े से सोफे की तरफ इशारा किया। राधे श्याम और काशी थोड़ा झिझकते हुए राव्या के पीछे पीछे सोफे तक जाने लगे। तभी अचानक सीढ़ियों से माधवी उतरती हुई आई। वो अपनी बनारसी साड़ी को संभालते हुए आंखें सिकोड़कर बोली, बहू, किसको अंदर लेकर आ रही हो? लेकिन उसकी नजरें जैसे ही राधे श्याम और काशी पर पड़ी, उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया। उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते समधी जी, माफ करना, हम आपका स्वागत में खड़े नहीं हो पाए, आप बिना बताए ही आ गए। क्या आप लोगों ने निवेदिता को बताया था? क्योंकि उसने मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद माधवी ने राव्या को आंखें दिखाते हुए कहा कि वे अनाही के माता पिता हैं, जो उनके लिए चाय बनाकर लाए। राव्या को ऑफिस बाद में चली जाना। ये सुनकर राव्या का चेहरा उतर गया। उसे सच में देर हो रही थी, पर सामने उसके अनाही के मम्मी पापा हैं, ये सुनकर उसके होठों पर स्माइल भी आ गई थी। उसने जल्दी से झुककर राधे श्याम और काशी के पैर छूकर कहा, नमस्ते अंकल आंटी, माफ करना, हम आपसे पहले मिले नहीं थे तो मैं आप दोनों को पहचान नहीं पाई। काशी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, हंसती खेलती रहो, कोई बात नहीं है बेटा। ये सुनकर राव्या के होठों की स्माइल बढ़कर उसके कानों तक पहुँच गई। अनंत को समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए। अब उसे लग रहा था कि दरवाजे पर शायद उसने राधे श्याम से थोड़ा ज्यादा ही रूडली बात कर लिया था, इसलिए वो भी जल्दी से उन दोनों के पैर छूते हुए बोला, मुझे भी माफ करना, मुझे लगा किसी को वैसे काम है इसलिए मैं। राधे श्याम ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोई बात नहीं है बेटा, मुझे निवेदिता जी से मिलना है और अगर अनाही व दामाद जी घर पर हैं तो उनको भी बुला दीजिए। माधवी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी बेटी के पैर सुबह सुबह घर पर टिकते कहाँ हैं? फोटो कप का वेदांत के साथ ऑफिस में जा चुकी है, रूहान यही है, मैं उसको बुलाकर लाती हूँ। माधवी के लहजे में ये कड़वाहट सुनकर काशी ने कहा, हमने अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाया है ताकि अगले घर जाकर भी वो किसी के सामने चंद पैसों के लिए भी हाथ न फैलाए। चाहे उसके पैर घर में टिकें या ना टिकें, पर मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ इस घर में सबसे ज्यादा काम भी वही करती होगी जो उसकी आदत है। काशी का ये जवाब सुनकर माधवी की भौहें तन गईं। अब उसे समझ आ रहा था कि अनाही की आवाज़ में वो कड़क कहाँ से आया होगा। अनंत भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं निवेदिता काकी को बुला कर लाता हूँ। बीच में कदमों से रूहान के कमरे में पहुँचे, उसने दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि दरवाज़ा खुला है, क्योंकि अनाही रूहान को बिना बताए ही ऑफिस गई थी, जिस वजह से वो दरवाज़ा खुला ही छोड़कर गई ताकि जब कोई रूहान को काफ़ी देने आए तो उसे दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े। एग्ज़ाम्स के बीच रूहान बुरी तरह थका हुआ था और कल ही उसके उसके सारे एग्जाम खत्म हुए थे, इस वजह से वो अब एक लंबी नींद चाहता था। माधवी ने बेट के पास जाकर रुहान के बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, रुहान गुड मॉर्निंग बेटा, देखो सुबह के 8:30 होने चले हैं, तुम अभी तक उठे नहीं। माधवी की आवाज सुनकर रुहान कुछ पल करवटें बदली और फिर धीरे से आंखें खोलकर माधवी की तरफ देखा और फिर नींद भरी आवाज में बोला, था कि मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए। माधवी ने मुस्कुराकर उसके पास बैठते हुए उसका गाल थपथपाकर कहा, मैं भी तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहती थी, मुझे पता है तुम काफी थक जाते हो आजकल, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, खुद के आराम के बारे में सोचना जैसे भूल ही चुके हो। पर कोई नहीं, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है, ये भी जल्दी चला जाएगा और तुम पहले वाले रुहान बन जाओगे जिसे खुद से प्यार करना आएगा। रुहान जो गहरी नींद में था, माधवी की ये बातें सुनकर उसकी नींद जैसे हवा हो चुकी थी। उसने झट से आंखें खोलकर कहा, जी आपकी इन बातों का क्या मतलब है, मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी से ये मोड़ कभी भी जाए, मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही बतानी है। इस बार हैरान होने की बारी माधवी की थी, पर उसने अपनी हैरानी को छुपाते हुए कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि बाहर अनाही की फैमिली आई है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें और मैं दोनों को पूछ रही है। अब अनाही तो यहाँ है नहीं, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाती हूँ, शायद उन्हें कोई काम है तुम दोनों से। काशी और राधे श्याम का जिक्र सुनकर रुहान नर्वस हो चुका था। उसने जल्दी से बिस्तर से उठते हुए कहा, भाई जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी नहा कर आता हूँ। इतना बोलकर वो लगभग दौड़ते हुए बाथरूम में गया और फिक्स 5 मिनट बाद ही जल्दी से वापस आया और फिर अपने कपड़े लेकर वापस बाथरूम में गया। माधवी उसकी ये हड़बड़ी देखकर अपने मन ही मन बुदबुदा रही थी, पहले तो मैं सोच रही थी कि अनाही तुम्हें अपने काबू में करना चाहती है, पर ऐसा नहीं है, अब तो मुझे तुम पर दया आने लगी है, पता नहीं क्या होगा। रुहान ने जल्दी से अपने शर्ट का आखिरी बटन लगाकर बालों में कंघी करते हुए कहा, चली जाइए, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं। माधवी हल्का सा मुस्कुराई और फिर रुहान और माधवी दोनों एक साथ हॉल में आए। निवेदिता भी तब तक वहाँ पहुँच चुकी थी और राविया भी उन दोनों के लिए काफी लेकर आई थी। राविया ने उनको काफी देकर अनंत की तरफ देखा, जो अब उसे शांत रहने का इशारा कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि राविया अब माधवी से इस बात पर भी बहस करे कि उसे ऑफिस जाना था, ना कि मेहमानों के लिए चाय बनानी थी। राधे श्याम ने अपने काम के हाथों से एक एनवेलप टेबल पर रखते हुए कहा, समधी जी ये सब क्या है, माना हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी बेटी के साथ ये सब होगा, हमें ये कभी मंजूर नहीं है।
ये सुनकर राधिका और माधवी के चेहरे पर जैसे चमक आ चुकी थी। अब तो उन दोनों को बेसब्री से इंतजार था उस एनवेलप को खोलने का, कि आखिर ऐसा क्या है जो इस एनवेलप में है और जो माधवी और राधिका दोनों नहीं कर पाई, वो किसी और ने कैसे कर दिया। उनकी खुशी तो छुपाने से भी नहीं छुप रही थी। वहीं रुहान के चेहरे के भाव बदल चुके थे, उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ने लगा था। वो जैसे समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है उस एनवेलप में, जिसकी वजह से अनाही के साथ बुरा हो रहा है। निवेदिता ने घबरा कर कहा, समधी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अनाही तो हमें अपनी जान से भी प्यारी है, मैं बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, और रुहान ने तो अपनी जिंदगी में जितनी इम्पोर्टेंस अनाही को दी है, इतनी किसी को नहीं दी, उसके बावजूद आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनाही के साथ यहाँ कुछ भी बुरा हो रहा है।